आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
एक वैश्विक अध्ययन में ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी सैकड़ों अनुवांशिक कड़ियों का खुलासा हुआ है। इस अध्ययन में शामिल अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के समूह ने संभावित नई दवाओं के लक्ष्यों की पहचान की है, जो अधिक प्रभावी उपचारों के विकास को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया से प्रभावित है। वैश्विक स्तर पर यह बीमारी 60 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस किस वर्ग के लोगों को होता है, फिजियोथेरेपिस्ट अपेक्षा यादव ने हमें विस्तार से बताया।
बेसिकली सबसे पहले तो जो एजिंग प्रोसेस होती है उसके कारण होता है, तो ये जो हम कह सकते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनमें मोस्टली ये पाई जाती है। एंड इसका कारण ये होता है कि अगर इनका ज्यादा वेट है, फिर इनकी जो हमेशा की जो इनकी आदतें हैं, जैसे कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी होती है, खान पान कैसा है आपका, तो उसके ऊपर भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का इफेक्ट पड़ता है अलग अलग इंसान के ऊपर में।
क्वींसलैंड स्थित मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि QIMR बर्गहोफर में वैज्ञानिक एसोसिएट प्रोफेसर मिशेल लप्टन ऑस्टियोआर्थराइटिस की जेनेटिक्स पर किए गए दुनिया के सबसे बड़े अध्ययन का हिस्सा थी।
People, you know, from all different cultures all around the world. And this study mainly focused on people of European ancestry. But it also includes some participants from other ancestries. But in this particular study, we didn't see any differences between any different findings from these other ancestries. But this is probably just due to the fact that the sample size is much smaller. So one of the important kind of future work that needs to be done is looking more in other ancestries.
जर्मनी के हेल्महोल्ट्ज़ म्यूनिख के नेतृत्व में किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल द्वारा किए गए निष्कर्ष, जिसमें QIMR बर्गहोफर के वैज्ञानिक भी शामिल थे, को एक ऑनलाइन उपलब्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में बीमारी से जुड़ी 500 से अधिक अज्ञात अनुवंशिक कड़ियों समेत सैकड़ों संभावित नए दवा लक्ष्यों की पहचान की गई है, जो अधिक प्रभावी उपचारों के विकास को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं।
The study looked particularly at drug repurposing. So this is the idea where instead of kind of developing new drugs, you can use genetics to test whether you think kind of current drugs would be useful in treating arthritis. So basically they carried out a screen and identified more than 270 approved drugs that could target proteins that have been shown to be important in the disease. So this opens up these opportunities to repurpose drugs that can accelerate the development of new treatments.
प्रोफेसर लप्टन कहती हैं कि उम्र, पर्यावरण, जोड़ों का अत्यधिक उपयोग, मोटापा, पारिवारिक इतिहास और अनुवांशिकी जैसे कारक इस बीमारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कारणों में शामिल हैं। MHA की CEO हेलेन जेंट्स कहती हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस देश में सबसे आम जोड़ों की बीमारी है। यहां बता दें कि मस्क्यूलोस्केलेटल हेल्थ ऑस्ट्रेलिया एक उपभोक्ता केंद्रित संस्था है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी मस्क्यूलोस्केलेटल बीमारियों से पीड़ित लोगों का समर्थन करता है।
Around the joints. So think of things like your knee joint, your hip joint. What happens is the cartilage starts to break down. And the cartilage is important because it helps with movement and it helps with us being able to do things like walk, run, bear weight. And osteoarthritis attacks the cartilage and breaks it down. So you start to get these where your bones start rubbing together, and that's what causes the pain and that's what causes the disability.
श्रीमती जेंट्स कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 2 मिलियन से अधिक लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं और ये किसी को भी किसी भी उम्र में प्रभावित कर सकता है।
In Australia, there are approximately 2.2 million people who are estimated to have osteoarthritis. And this is expected to increase, certainly because of the fact that we have an ageing population here in Australia. But the other critical factor here is that as our obesity levels increase, so does the prevalence of osteoarthritis. With the increasing prevalence of obesity and overweight in Australia, osteoarthritis and other musculoskeletal diseases are actually starting to affect people at younger and younger ages.
सुश्री जेंट्स इस अध्ययन की सराहना करती हैं और कहती हैं कि एमएचए इस शोध के आधार पर व्यक्तिगत उपचारों को अपनाएगा। डॉक्टर लेटिसिया डेवेजा सिडनी में स्थित एक र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं। वे र्यूमेटोलॉजिकल बीमारियों जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करती हैं। आमतौर पर मरीज उन्हें तब दिखाते हैं जब डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से इलाज कराने के बावजूद उनका दर्द कम नहीं हो रहा होता। डॉक्टर देवेजा ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच के अंतर के बारे में बताती हैं।
ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ जॉइंट डिजीज अफेक्ट्स जॉइंट्स इन द बॉडी मोस्ट कॉमनली द हैंड्स द स्पाइन द नीज एंड द हिप्स व्हाइल ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज ऑफ द बोन मेटाबॉलिज्म दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द बोन्स प्रीडिस्पोजेस टू फ्रैक्चर्स बट इट्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक।
अध्ययन में ये पाया गया कि 2050 तक मरीजों की संख्या 1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्वास्थ्य स्थितियों में से एक बन जाएगी।
जेनेटिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्टियोआर्थराइटिस इन वी नो फ्रॉम जेनेटिक स्टडीज दैट सर्टेन एथनिसिटीज कैन आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू गेट ऑस्टियोआर्थराइटिस इन पर्टिकुलर जॉइंट्स सच एज द हिप्स but it's a disease that affects the population globally, really. It can affect all races. And the genetic studies are important, really, to identify the target for the development of the drugs, trying to find a cure for osteoarthritis.
शोधकर्ताओं ने ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी 513 नई अनुवंशिक कड़ियां खोजी हैं, जिससे ज्ञात अनुवंशिक कड़ियों की कुल संख्या 962 हो गई है। इसने ऑस्टियोआर्थराइटिस के विकास में शामिल 8 जैविक प्रक्रियाओं की भी पहचान की, जो चिकित्सीय हस्तक्षेप के लिए और अधिक लक्ष्यों का संकेत देती हैं। इन प्रक्रियाओं में स्कैडियन रिदम, जो शरीर की आंतरिक घड़ी है, और ग्लियल सेल कार्य शामिल हैं, जो तंत्रिका तंत्र का समर्थन करते हैं। प्रोफेसर लप्टन कहती हैं कि उनका अध्ययन महत्वपूर्ण रोग मार्गों के बारे में बात करता है, जिन पर पहले शायद ध्यान नहीं दिया गया था।
So one example is circadian rhythm, which is our kind of body's internal clock that regulates sleeping patterns. And the study showed that circadian rhythm seems to have have an effect on your risk. So it could be that disruptions to circadian rhythm could affect the ability of bone and joint tissues to repair. So that's kind of a new avenue of research that could lead to maybe potentially new drugs.
ऑस्टियोआर्थराइटिस की अनुवांशिक संरचना के बारे में नए दृष्टिकोण अधिक व्यक्तिगत उपचार रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और नैदानिक परीक्षणों के डिजाइन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इस अध्ययन ने लगभग 2 मिलियन लोगों से प्राप्त अनुवांशिक नमूनों के डेटा का विश्लेषण किया, जिनमें से लगभग 4,90,000 लोग इस बीमारी से प्रभावित थे। डेटा सेट्स में उन हजारों ऑस्ट्रेलियाई लोगों का डेटा भी शामिल था, जिन्होंने अन्य QIMR बर्गहोफर नेतृत्व वाले अध्ययन में भाग लिया था, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित थे। मस्क्यूलोस्केलेटल हेल्थ ऑस्ट्रेलिया की CEO हेलेन जेंट्स ने किसी भी व्यक्ति को जो मस्क्यूलोस्केलेटल स्वास्थ्य से संबंधित सवालों का सामना कर रहे हों, अपनी टीम से संपर्क करने की सलाह दी है।
It's a free national helpline that anyone can ring and talk to a qualified healthcare professional about their musculoskeletal health or about their musculoskeletal disease. And what we are very focused on is patient or consumer empowerment. So our focus is about providing people with the support and information that they need so that they can make informed decisions about how they manage their musculoskeletal health.
सुश्री जेंट्स कहती हैं कि एमएचए में विस अनुसंधान और प्रमाण आधारित हैं, जो लोगों को सही उपकरण प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और मस्क्यूलोस्केलेटल स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय ले सकें।
One of the big campaigns that we run each year is called the world's biggest sit-in. And what that's about is about chair-based exercise. And it's a challenge to everyone to think differently about how they move and how they engage with physical activity. And a first step to doing that could be a chair-based workout. So you can actually sit in a chair, move, build up a bit of a sweat, build up some cardio, but you're still engaging in movement, which is good for your musculoskeletal health.
Dr. Deveza, ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में व्यायाम और वजन प्रबंधन के महत्व के बारे में बात करती हैं। वे ये भी जोड़ती हैं कि उपचारों को प्रत्येक मरीज की क्षमता के अनुसार अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है।
In terms of the treating osteoarthritis, we highlight the importance of physical therapy, exercise therapy, and in weight management, because we know these are very important factors that drive the progression of the disease. Yeah, with an appropriate exercise program, with weight management guided by your health professional, patient's health professionals, symptoms can improve greatly in the majority of patients. When we see the results of this most recent study showing these several different genetic associations, the importance is really to highlight that we should be personalizing treatment and really be identifying what are the specifically risk factors in each individual patient so we can better tailor treatment.
Melbourne based physiotherapist Apeksha Yadav batati hai ki kis tarah se is research se aane wale samay mein इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को काफी फायदा मिलेगा।
वो रिसर्च के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू कि हम कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस को टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज उसके कारण जैसे कि बता रहे हैं कि ये जेनेटिकली उसको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिस इंसान को जो ट्रीटमेंट चाहिए वो मिलेगी। तो उस हिसाब से अभी तो ऐसा होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सारे जितने भी लोग हैं उनको, पेशेंट्स को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये रिसर्च के हिसाब से वो कहते हैं कि वो जो उनका जेनेटिक्स है उसके हिसाब से उनको वही ट्रीटमेंट दी जाएगी, तो उसके उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी और फिर इनकी लाइफ इजी हो जाएगी। जैसे कि कई बार हम सुनते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट हो गया है, नी रिप्लेसमेंट हो गया है, तो वो उसका कारण ही होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिक के जो चेंजेस होते हैं उसके कारण वो जोड़ों को बदलना पड़ता है। तो अगर ये ट्रीटमेंट आ जाती है तो काफी सारे लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, उन्हें ये सारे ट्रीटमेंट से जाना नहीं पड़ेगा, अपने नॉर्मल जॉइंट्स के साथ में रहेंगे और सारी एक्टिविटीज कर सकेंगे जो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कारण काफी सारी चीजें नहीं कर पाते, जैसे कि जमीन पे बैठना, उठना वगैरह, ये सारी चीजें नहीं हो पाती उन लोगों से। तो वो अगर ये ट्रीटमेंट के आने से अगर उनको बेनिफिट मिलता है तो इट विल बी रियली नाइस।
ये रिपोर्ट SBS न्यूज से हेलेना कृष्णमूर्ति के साथ हिंदी में ज्योतिका द्वारा पेश की गई है।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।